लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के संत दामासुस प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
कारी फ्रतेली सोरेले बोंजोर्नो। डोपो इल लुंगो इटिनेरारियो डेडिकातो अला प्रेगियेरा ओजी डियामो इनिशियो अ उन नुओ चिक्लो डी कैटेकेसे।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। प्रार्थना पर अपनी एक लंबी धर्म शिक्षा माला के उपरांत आज हम धर्म शिक्षा की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। संत पापा ने कहा कि मैं गलातियों के नाम लिखे गए संत पौलुस के पत्र में जिक्र कुछ विषयों पर चिंतन करना चाहूँगा। यह एक महत्वपूर्ण पत्र है। हम न केवल इस प्रेरितिक पत्र के बारे में जानें, बल्कि कुछ विषयों के बारे में खास रूप से चिंतन करें जिसकी चर्चा गहराई से की गई है, जो सुसमाचार की सुंदरता को प्रस्तुत करता है। संत पौलुस अपने इस पत्र में अपने जीवन की कई बातों का जिक्र करते हैं, जो हमें उनके मन परिवर्तन और यीशु ख्रिस्त की सेवा हेतु उनके जीवन निर्णय की जानकारी प्रस्तुत करता है। वे कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं, खासकर विश्वास, स्वतंत्रता, कृपा और ख्रिस्तीय जीवन पर प्रकाश डालते हैं, जो वर्तमान कलीसियाई जीवन के बहुत सारे वास्तविक पक्षों का स्पर्श करता है। सर्वप्रथम इस पत्र में हमारे लिए प्रेरित द्वारा गलातियों के समुदाय में सुसमाचार प्रचार की बातें उभर कर आती हैं। संत पौलुस वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं। हमें स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता है कि वे किस भौगोलिक प्रांत की चर्चा करते हैं, और न ही हम यह कह सकते हैं यह इस तिथि में लिखा गया है। हम इस बात से वाकिफ हैं कि गलाती अपने में एक प्राचीन समुदाय था, जो बहुत ही साहसिक जीवन व्यतीत करते हुए अनातोलिया प्रांत में बस गए, जो आज अंकारा शहर कहलाती है, जो तुर्की की राजधानी है। पौलुस इस बात की चर्चा करते हैं कि अपनी बीमारी के कारण उन्हें उस प्रांत में रुकने को बाध्य होना पड़ा, लेकिन प्रेरित चरित में संत लुकस इसे एक आध्यात्मिक प्रेरणा से पुष्ट पाते हैं। वे कहते हैं,
Attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia।
जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। ये दोनों तथ्य अपने में विरोधाभास नहीं है, वरन ये इस बात की ओर इंगित कराते हैं कि सुसमाचार प्रचार सदैव हमारी इच्छा और योजनाओं पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमें अपने को उन योजनाओं के अनुरूप बना लेने की मांग करता है जिसकी परिकल्पना हमने कभी नहीं की थी। संत पापा ने कहा कि पवित्र आत्मा आज भी इस कार्य को जारी रखते हैं। बहुत से प्रेरित हैं जो अपनी मातृभूमि का परित्याग कर दूसरे स्थानों में प्रेरिताई कार्य हेतु जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस बात का साक्ष्य पाते हैं कि अपने अथक प्रेरितिक कार्य के दौरान प्रेरित पौलुस ने बहुत से छोटे समुदायों को पाया जो गलातिया प्रांत में फैले थे। उन्होंने छोटे समुदायों को तैयार किया जो आज की ख्रिस्तीय संस्कृति में खमीर के समान है। उन छोटे समुदायों का विकास हुआ, वे बड़े हुए और आगे बढ़े। छोटे समुदाय का निर्माण किया जाता जो आज भी पहले के समान सुसमाचार प्रचार का स्वरूप बनता है। संत पापा ने कहा कि हम पौलुस की प्रेरिताई में एक आग को पाते हैं जो कलीसियाओं की स्थापना के बाद एक खतरे का अनुभव करते हैं। उनके विश्वास की बढ़ोतरी हेतु कौन कार्य करेगा? एक प्रेरित माता पिता की भांति होता है जो बच्चों पर आने वाली विपत्ति को जान जाते हैं। खतरे हमारे लिए आते और जाते हैं, जैसे कि किसी ने कहा है, गिद्धे समुदाय में हमला करने आते हैं। वास्तव में यहूदियों के बीच से आए कुछ ख्रिस्तियों ने घुसपैठी की और चालाकी से प्रेरित की शिक्षा के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया, यहाँ तक कि उन्हें बदनाम करना भी चालू कर दिया। उन्होंने प्रेरित पौलुस के अधिकार को छीनने का प्रयास किया, जैसे हम एक प्राचीन प्रथा को देखते हैं जो समय से चली आ रही है कि किसी अवसर पर कोई व्यक्ति अपने को सत्य के धारक स्वरूप प्रस्तुत करता और दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को और यहाँ तक कि व्यक्ति को नीचा दिखलाने की कोशिश करता है। पौलुस के विरोधियों ने गैर ख्रिस्तियों से यह वाद विवाद किया कि उन्हें भी खतना करते हुए मूसा की संहिता का अनुसरण करने की जरूरत है। वे पीछे जाते हुए पुरानी बातों को पुनः लाने की कोशिश करते हैं।
I Galati quindi avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale.
इस भांति गलातियों ने अपनी संस्कृति का परित्याग करते हुए यहूदी संहिता के अनुरूप निर्देशित नियमों का अनुसरण किया होगा। इतना ही नहीं, उन विरोधियों ने यह तर्क दिया कि पौलुस एक सच्चा प्रेरित नहीं है, अतः उसे सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार नहीं है। हम बहुत बार ऐसी चीजों को देखते हैं। यह विशिष्ट रूप से बुरे लोगों का कार्य है जो लोगों को बांटते हैं, वे निर्माण का कार्य नहीं करते हैं। गलातियों के पत्र में हम इस बात को पाते हैं। गलाती समुदाय अपने को एक विकट परिस्थिति में पाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए था? पौलुस की शिक्षा को सुनते हुए उनका अनुसरण करने या नए प्रचारकों को सुनना जिन्होंने उन्हें दोषी करार दिया? हम उनके भ्रमित मन की स्थिति का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं जो उनके हृदय को प्रभावित करता है। उनके लिए यीशु को जानना और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान से मिलने वाली मुक्ति में विश्वास करना वास्तव में एक नए जीवन, स्वतंत्र जीवन की शुरुआत थी। उन्होंने हिंसात्मक गुलामी में भी उस मार्ग में चलना शुरू किया था जो मुक्ति की ओर ले चलती है। अतः नए प्रचारकों की आलोचना के कारण वे दुविधा और अनिश्चितता में पड़ गए कि किस तरह का व्यवहार करें। लेकिन कौन सही है, यह पौलुस, ये लोग जिन्होंने अभी आकर शिक्षा दी, हम किसकी सुने? संक्षेप में हम कह सकते हैं यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ऐसी परिस्थिति हम ख्रिस्तीय जीवन के लिए नई नहीं है। आज भी वास्तव में उन उपदेशकों की कमी नहीं जो विशेष रूप से संचार माध्यमों के द्वारा समुदाय को भ्रमित विचलित कर देते हैं। वे अपने को ईश वचन के उद्घोषक स्वरूप प्रस्तुत नहीं करते जो यीशु ख्रिस्त में मनुष्य को प्रेम करते क्रूस पर मरकर जी उठे, बल्कि वे अपने को सत्य के प्रवर्तक बतलाते हैं। अतः वे सही ख्रिस्ती होने का मार्ग बतलाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे सच्ची ख्रिस्तियता के प्रवर्तक हैं।
C'è insomma la tentazione di rinchiudersi in alcune certezze acquisite in tradizioni passate.
आज भी पहले की तरह ही एक तरह का प्रलोभन है जहां हम अपने को प्राचीन रीतियों में बंद कर लेते हैं। हम कैसे उन लोगों की पहचान कर सकते हैं? इसका उदाहरण हम अपने लिए आलोचकता स्वरूप पाते हैं। सुसमाचार की घोषणा हमें स्वतंत्र करती, खुशी से भर देती, लेकिन आलोचकता में हम सदैव लोगों को कठोर पाते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए। आलोचकता उन लोगों की पहचान है। पौलुस का गलातियों के नाम लिखा गया पत्र हमें इस मार्ग को समझने हेतु मदद करता है। उनके द्वारा दिखलाया गया मार्ग हमें स्वतंत्र करता है जो हमें यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के नए मार्ग में ले चलता है। यह उद्घोषणा का मार्ग है जो नम्रता और भ्रातृत्व में प्राप्त किया जा सकता है। नए प्रचारक नम्रता के मार्ग भ्रातृत्व को नहीं जानते हैं। यह विनम्रता और विश्वास में आज्ञाकारिता का मार्ग है। नए प्रचारक दोनों में से किसी को नहीं जानते हैं। ये दो मार्ग पवित्र आत्मा के कार्यों को कलीसिया में सदैव आगे ले चलते हैं। कलीसिया में उपस्थित पवित्र आत्मा में हमारा विश्वास हमें आगे ले चलता और हमें मुक्ति प्रदान करता है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sin nomine Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत दमासियोस प्रांगण में बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान गलातियों में ख्रिस्तीय समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए संत पौलुस के पत्र से धर्म शिक्षा का नया चक्र शुरू किया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट संदेश में लिखा, संत पौलुस ने गलातियों को लिखे अपने पत्र में जिस मार्ग का संकेत दिया है वह नम्र और आज्ञाकारी विश्वास का मार्ग है। इस निश्चिंतता में कि पवित्र आत्मा हर युग में कलीसिया में काम करता है। उधर कारितास इटालियाना द्वारा इतालवी धर्माध्यक्षों के साथ आयोजित मानवीय गलियारे के बदौलत बुधवार को 24 प्रवासियों को रोम पहुंचने की उम्मीद है। नाइजर के 24 शरणार्थी जो लीबिया के डिटेंशन सेंटर में रह चुके हैं 23 जून को रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। कारितास इटालियाना इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन और UNCHR द्वारा आयोजित एक मानवीय गलियारे के माध्यम से पिछले वर्षों में कई शरणार्थियों का आगमन हुआ है। मानवीय गलियारे इटली के लिए गरीब देशों से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले लोगों के सुरक्षित और कानूनी हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। वास्तव में इतालवी सरकार के साथ स्थापित प्रोटोकॉल और कैथोलिक कलीसिया को दान किए गए 8x1000 के फंड के साथ साथ कारितास इटालियाना के माध्यम से परिवारों, पल्लियों, संघों और स्कूलों के समर्थन के लिए हाल ही में इतालवी धर्माध्यक्ष वर्षों से मध्य पूर्व और अफ्रीका से मानवीय गलियारों, पुनर्वास और मानवीय निकासी को व्यवस्थित करने में सक्षम रहे हैं। शरणार्थी छोटे समूहों में यात्रा करते हैं और अब तक 1000 से अधिक लोगों की मदद की जा चुकी है। पूरे देश में ख्रिस्तीय समुदायों द्वारा उनकी देखभाल की जाती है ताकि एक बड़ी एकाग्रता से बचा जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने अक्सर उन सभी शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है जो लीबिया के निरोध केंद्रों में फंसे हुए हैं। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय गलियारों की सुरक्षा के माध्यम से फंसे हुए लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों को जल्द से जल्द निकालने में मदद करने के लिए कहा है। इटली ने फरवरी 2016 में मानवीय गलियारों के माध्यम से लीबिया में फंसे शरणार्थियों को लेना शुरू किया। उधर माली में 21 जून को मोपती धर्म प्रांत के सेगुए पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लियोन के साथ अन्य चार लोगों का अपहरण किया गया। राष्ट्रीय धर्माध्यक्ष सम्मेलन के एक सदस्य फादर एलेक्सिस ने कहा, हथियारबंद लोगों ने इनका अपहरण कर लिया जब वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सेगुए से सायन की यात्रा कर रहे थे। फादर लियोन के अलावा सेगु के मेयर, उप महापौर और दो अन्य सदस्य थे। यह पहली बार नहीं है कि माली कलीसिया के पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों को अपहरण का सामना करना पड़ा है। दो नाटकीय उदाहरणों का उल्लेख करना पर्याप्त है। फादर पियर लुइजी मैकली, जो कि अफ्रीकी मिशन सोसाइटी के सदस्य मिशनरी हैं, जिसे 2018 में पास के नाइजर में अपहरण कर लिया गया था और अक्टूबर 2020 में माली में रिहा कर दिया गया, और सिस्टर ग्लोरिया सेसिलिया नरवाज, जो मरिया इमाकोलाता की फ्रांसिस्कन धर्म समाज की सदस्य हैं, उन्हें 2017 में दक्षिणी माली के सिकासो धर्म प्रांत में अगवा कर लिया गया और अभी भी वे अपहरणकर्ताओं के हाथों में हैं। कहा जाता है कि हिंसा के मूल में स्वतंत्रता का तनाव है, साथ ही अलकायदा और तथाकथित इस्लामिक स्टेट के करीब जिहादी समूहों की उपस्थिति भी है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों में 8,500 से अधिक बच्चों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया था और लगभग 2,700 अन्य मारे गए थे। नई रिपोर्ट बच्चों की हत्या, अपंग और यौन शोषण, अपहरण और सहायता पहुंच से इनकार का विस्तृत विवरण देती है। निष्कर्षों ने पुष्टि की कि 19,780 बच्चों के खिलाफ उल्लंघन किया गया था। 2020 में अधिकांश उल्लंघन सोमालिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन में किए गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि स्कूलों और अस्पतालों पर हमले अत्यधिक रहे। गंभीर उल्लंघन के शिकार सभी बच्चों का एक चौथाई हिस्सा लड़कियां हैं और ज्यादातर बलात्कार और यौन हिंसा के शिकार हुई हैं। रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गाम्बा ने कहा, वयस्कों के युद्धों ने 2020 में लाखों लड़कों और लड़कियों का बचपन छीन लिया है। यह उनके लिए पूरी तरह से विनाशकारी है, लेकिन यह पूरे समुदायों के लिए भी, जहां वे रहते हैं और स्थायी शांति के अवसरों को नष्ट कर देते हैं। चौंकाने वाले आंकड़ों के बावजूद रिपोर्ट अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण सूडान और सीरिया में युद्धरत दलों के साथ बातचीत में ठोस प्रगति दिखाई है। सशस्त्र समूहों और बलों ने भी संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 12,643 से अधिक बच्चों को अपने चंगुल से मुक्त किया। 2016 में बाल सैनिकों के मुद्दे पर बोलते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों की गरिमा का सम्मान किया जा सके और गुलामी के इस रूप को समाप्त किया जा सके। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोवैक्स साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से खुराक प्राप्त करने वाले आधे से अधिक गरीब देशों के पास जारी रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। WHO के एक वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस आयरवर्ल्ड ने एक ब्रीफिंग में कहा कि आधे से अधिक गरीब देशों के पास अभी भी टीकाकरण कार्यक्रमों को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त टीके की आपूर्ति नहीं है और उनमें से कई पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। टीकों में मौजूदा कमी आंशिक रूप से निर्माण में देरी और भारत में आपूर्ति में व्यवधान के कारण होती है, जो दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन खुद कोविड-19 के बढ़ते मामलों से संघर्ष कर रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।